महर्षि रमण ने एक बात कही है कि जन्म लेते ही, या यूं कहिए कि देह के जन्म के साथ ही इस देह के कर्म भी निश्चित हो जाते हैं। इसको वो कह रहे हैं कि जिन कर्मों को करने के लिए ये देह पैदा हुई है, वो सारे कर्म इस देह को करने होंगे। तुम चाहो या ना चाहो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और एग्जैक्टली यही बात गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि ये युद्ध जो जिससे तू बचने की कोशिश कर रहा है, जिसको तू नहीं करना चाह रहा है, ये युद्ध पहले ही हो चुका है। अर्थात ये प्रारब्ध के अंतर्गत है और ये सारा घटनाक्रम घटेगा। तुम इस युद्ध को करना चाहो या करना ना चाहो, इससे घटनाक्रम पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। तो विचार करने की बात यहां पर यह है कि कर्म में परिवर्तन करने की अर्जुन को सामर्थ्य ही नहीं दी गई है। लेकिन अर्जुन का जिस वातावरण में लालन पालन हुआ है, उसको यही सिखाया गया है कि तुमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए। सारा जो है वो क्रियात्मक जीवन उसको गुरुकुल में सिखाया गया है। लेकिन ये कर्म का रहस्य जो कृष्ण समझा रहे हैं उसको अर्जुन को, ये उसको नहीं सिखाया गया। तो इसीलिए उसके अंदर ये कन्फ्यूज़न बैठा हुआ है कि हर व्यक्ति तो स्वतंत्र है, वो चाहे तो कोई कर्म करे चाहे तो ना करे। लेकिन जब कृष्ण की बात सुन रहा है तब उसको दूसरी बात समझ में आ रही है। वो कह रहे हैं ये चॉइस उसको दी ही नहीं गई है, जैसा कि महर्षि रमण कह रहे हैं। तो ये रहस्य वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन उस पर उसको कृष्ण पर भरोसा भी पूरा है। यदि उसको कृष्ण पर श्रद्धा नहीं होती तो वो कृष्ण को क्यों मांगता, सेना क्यों नहीं मांगता जैसे दुर्योधन ने मांगी। इसका मतलब उसके अंदर ये निश्चय है कि कृष्ण सर्वसमर्थ है, सेना उनकी सर्वसमर्थ नहीं है, इसलिए उसने कृष्ण को मांगा था। तो वो विचार करता है कृष्ण की बातों पर। जब विचार करता है तो उसके मन में अनेक क्वेश्चन उठते हैं, एक एक करके उनसे पूछता है। तो सारे क्वेश्चन जो उसके खत्म हो जाते हैं, तब कृष्ण अंत में कहते हैं उससे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरणागत हो जा, यदि तू ऐसा करता है तो क्या होगा परिणाम उसका, तुझको सारे पापों से मुक्त करके मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। अब आदमी कंफ्यूज हो जाता है, कौन से धर्मों के त्याग की बात कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन से। हम धर्म के बारे में क्या जानते हैं, जो क्रियात्मक धर्म है वो तो कर्तव्य कर्म ही धर्म है। जो कर्तव्य कर्म मेरे हैं उनको मैं ठीक प्रकार से करूं, मुझको तो यही समझ में आता है साधारण बुद्धि से। लेकिन कृष्ण एक बड़ी बारीक चीज कह रहे हैं। वो कह रहे हैं धर्म क्या है, कर्म का कर्ता बनना। मनुष्य के लिए जो धर्म का आधार है वो कर्म का कर्ता बनना है ना। अच्छे कर्म करेगा तो कर्ता बन के तो करेगा वो। तो कृष्ण अर्जुन से को इस बात के लिए राजी कर रहे हैं या इस बात के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब सारा विज्ञान समझा दिया तब ये बात तो बचती ही नहीं कि अर्जुन करने वाला है। तो अर्जुन ने आप जो भी कर्म करना है वो कर्तापन का त्याग करके करना है। और विचार करो, कर्तापन का त्याग कौन कर सकता है? हम सोचते तो हैं हम कर्तापन का त्याग कर रहे हैं, लेकिन विचार ये भी तो करो, कर्तापन का त्याग कर कौन सकता है? हमारी क्या स्थिति है? हम कर्म करते हैं फल को लक्ष्य करके। ऐसा कोई हम में से है जो कर्म करता हो फल गायब हो उसका? हम जो भी कर्म करते हैं फल को लक्ष्य करके करते हैं, और वो फल हमको कर्म के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। इसी में हमारे कर्म की सफलता है और विफलता है, इसी में हमारी प्रसन्नता है, इसी में हमारी बेचैनी है। तो हमारा सारा कर्म ए टू जेड फल के वास्ते है। भले ही हम कर्तव्य भाव से करें, लेकिन उसमें फल का निर्णय छुपा हुआ है और वो हमको चाहिए। अब महाराज जी से इस बारे में बात हुई, प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी एक चीज बताइए, ऐसा कहते हैं कि ईश्वर करता है, जीव करता नहीं, तो जीव को फल क्यों भोगना पड़ता है? अरे जो करे वो फल भोगे, जब जीव करता है ही नहीं तो उसको फल क्यों भोगना पड़ता है? तब महाराज कहते हैं, प्रेमी बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो तभी तक तुम भोगता भी हो। जिस दिन तुम अपने को कर्ता समझना बंद कर दोगे उस दिन तुम भोगता भी नहीं रहोगे। तो इसीलिए कर्म करने में एक जैसा है बिल्कुल, लेकिन उस कर्म करने के पीछे भावना क्या है उसमें जो महर्षि रमण बात कह रहे हैं कि उसमें कर्म के निष्पादन का बीज छिपा हुआ है। तुम किस भावना से कर्म कर रहे हो बस उसी में रहस्य छिपा हुआ है प्रारब्ध का। क्योंकि यदि तेरा कर्म निष्काम है, और निष्काम कर्म वही होता है जिसको ना तू करने वाला है ना तेरा उसके फल से कोई वास्ता है, ये दोनों ही चीजों से तेरा संबंध नहीं होता, वो कर्म उसको कहते हैं निष्काम कर्म। पूरा होश रहता है कर्म करते वक्त भी कि अंतर्यामी प्रभु इस देह का इस्तेमाल कर रहे हैं इस कर्म को करने के लिए। हम तो ये बात एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, लेकिन जो निष्काम कर्म करता है वो प्रत्यक्ष जानता है इस बात के लिए कि मैं करता नहीं हूं, उसका अनुभवी ज्ञान होता है। हमारा थ्योरेटिकल ज्ञान है, इसलिए हम निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते। इसलिए निष्काम कर्म केवल सत्पुरुष कर सकता है। हम निष्काम कर्म की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं भाई, कोई बड़े अहंकारी अहंकार के साथ कर्म करता है, लेकिन कोई निर्माण होकर कर्म करता है, ये प्रभु ने शक्ति दी है, प्रभु ने ये पात्र दिया है, इस देह से इसकी सेवा का वक्त आ गया है, इसलिए प्रभु इस देह से इसकी सेवा करवा रहे हैं, मैं कौन होता हूं, ये विचार है। विचार के द्वारा हम निष्काम कर्म करने की कोशिश करते हैं और फल में भी ये रखते हैं, फिर इसकी सेवा हो गई, इसका दुख दूर हो गया तो प्रभु की कृपा है इसके ऊपर, नहीं हो पाया इसका दुख दूर तो इसका प्रारब्ध है, ये भी विचार है। तो जो गहरे कर्तापन के संस्कार आपके अंदर बनते, गहरे इच्छा का चक्र आपका आगे बढ़ता, उससे आपको कुछ छुटकारा मिलेगा, पूरा नहीं। उसके जो संस्कार बनेंगे आपके बड़े वीक संस्कार बनेंगे, और जो पूरी तरह से मैं करके करेगा उसके गहरे संस्कार बनेंगे, अंतर उसके संस्कारों में आएगा। निष्काम नहीं है वो, निष्काम होता तो संस्कार बनते ही नहीं उसके। तो इसीलिए आप कर्म किस प्रकार कर रहे हो, किस भावना से कर रहे हो, फर्क उस चीज का है, कर्म का कोई फर्क नहीं है। इस प्रकृति में कितने कर्म हो रहे हैं, कोई गिनती है कि कर्मों की प्रकृति में कितने कर्म हो रहे हैं, कोई गिनती है? क्या ईश्वर को किसी कर्म की जरूरत है? तो मेरा शरीर भी तो प्राकृतिक है, मैं अपने आप को स्पेशल आदमी समझता हूं, मैं कहां स्पेशल हूं भैया, जैसे प्रकृति में चंद्रमा काम कर रहा है, जैसे सूर्य काम कर रहा है, ऐसे मेरी देह भी काम कर रही है, इसमें कोई अंतर ही नहीं। मेरी देह पूरी तरह से प्राकृतिक है और पूरी तरह से प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए महर्षि राम ने एक जगह यह भी कहा है कि केवल देह का प्रारब्ध भी नहीं होता, पूरे संसार का प्रारब्ध होता है। देह के साथ पूरे संसार का प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि सारे जगत का कर्ता ईश्वर है, सकल जगत का कर्ता। जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान। तू अकर्ता है लेकिन तेरे अंदर बड़ी गलतफहमी बैठी है, तू करता है, तू गुणवान है। तो इस मूर्खता से या इस अज्ञानता से मैं जितनी जल्दी छुटकारा पा जाऊं उतना ही मेरा भला है इसमें। तो कर्म कैसे करूं मैं, एकदम से तो आप नहीं कर सकते, नहीं जान सकते उसको। तो इसलिए महाजी कहां से शुरू कर रहे हैं, देखो गुरु कहां से शुरू कर रहा है। हम समझते हैं ये काम तो बहुत कठिन है, सब हो ही नहीं सकता ये तो। लेकिन जब गुरु बनाया है तो गुरु देखो तो क्या कह रहा है। वो महाजी कह रहे हैं प्रेमी जिन कर्मों को तू जानता है ये गलत है, तेरा मन इस बात को समझता है ये गलत है। या जब तुम शास्त्र पढ़ते हो या गुरु का संग करते हो, उसके वचन को पर ध्यान देते हो, तब तुम्हारे अंदर ये बुद्धि आ जाती कौन सा गलत कर्म गलत है कौन सा सही है। तो जिसको तुम जानते हो ये गलत है, सबसे पहले उसका त्याग करो। तो सबसे मोटी बात है ये अध्यात्म कि हम सब जानते हैं एक दूसरे को देखते भी तो ये गलती कर रहा है, बेटे को कैसा व्यवहार करना चाहिए पिता को पता है, बेटा भी अनजान है इस मामले में तो माता पिता गाइड कर रहे हैं, देखो ये बेटा ये गलत होता है ये सही होता है, ये करो ये मत करो। तो जिस चीज को आप जानते हो कि ये दोष है ये अवगुण है, सबसे पहले उसका त्याग करना चाहिए। उसके बाद वो दूसरी बात कह रहे हैं कि अब जो कुछ भी नॉर्मल है, जो नॉर्मल जीवन है, नॉर्मल व्यवहार है, नॉर्मल कर्म है, उसमें अब तुम सतपरायणता धारण करने की कोशिश करो। अर्थात जो कर्म तुम्हारे हाथों से ठीक कर्म, खराब तो पहले छूट गया, आप जो ठीक कर्म आपका बचा है करने के लिए, उसमें ईश्वर परायणता की बात कर रहे हैं वो, कि ठीक कर्म जो तुम्हारे द्वारा हुआ इसमें ध्यान रखो कि प्रभु ने तुमको ऐसा प्रारब्ध दिया था, ये प्रभु ने तुमसे करवाया है, इसीलिए इसका कर्ता वास्तव में तुम प्रभु को समझो। या यूं कह लो कि अंतर्यामी प्रभु अंदर ही बैठे हुए हैं, उन्होंने ये शक्ति दी है तुमको इस कर्म करने के लिए, उनके कारण ही ये कर्म हो पाया है, इसलिए इसका जो नाम है या इसका जो एहसान है वो प्रभु पर ही रखो, अपने ऊपर मत ओढ़ो कि मैंने किया। और जो कुछ भी होश में रहते हुए आपने ठीक कर्म करने की कोशिश की थी, उसका जो कुछ भी परिणाम आता है उसमें ईश्वर हुक्म देखो कि प्रभु ने यही परिणाम देना था, इसमें दूसरे लोग कारण करता नहीं है, मैं सबको दोषी बताता हूं, इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया, कोई कारण करता नहीं, प्रभु ने ऐसा ही फल निर्धारित कर रखा था, प्रभु ने दे दिया। इसलिए महाजी दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रभु आप उस कर्म फल में संतोषवान रहिए। हम बेचैन हो जाते हैं कर्म फल में, अरे 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 इतने नंबर आना चाहिए थे बेटे के मेरे, इतने आए, मैं तो बहुत कराई थी, बेचैनी क्यों हो रही है भाई, इसका अंदर ईश्वर का होश नहीं है तुम्हारा, तुम स्ट्रांग कर्तापन में खड़े हो, अभी आम सामाजिक प्राणी हो, अभी तो अध्यात्म के राही नहीं हो, नहीं तो ये बेचैनी क्यों आपके अंदर। तो हर फल में हर कर्म में आपके अंदर ये होश बना रहना चाहिए। और ये होश उसके लिए नहीं कहा महाराज ने जो जान के गलत कर्म करता है, वो तो कर ही नहीं सकता ये काम, उसके लिए तो ये काम ये आदेश है ही नहीं, ये संदेश है ही नहीं उसके लिए, तो ये तो उसके लिए है जो ठीक रास्ते पर आ गया। तो ये क्यों कह रहा है गुरु, ये गुरु इसलिए कह रहा है कि गुरु जानता है कि ये शिष्य मुझको क्यों मान रहा है, इसने मेरे ऊपर श्रद्धा क्यों की है, इसने मुझको अपना गुरु क्यों बनाया है। गुरु जानता है कि ये ईश्वर को जानना चाहता है, भाई आपने क्यों गुरु धारण किया है, गुरु को इसीलिए तो मानते हो। जो इसलिए गुरु को मानता है कि मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे, वो तो मूर्ख है, वो तो जानता ही नहीं कि गुरु का यूज क्या होता है, गुरु किस लिए धारण किया जाता है, वो तो जानता ही नहीं। जो जानता है गुरु क्यों धारण किया जाता है, तो वो तो इसीलिए वास्ते गुरु के पास आता है, ये मुझको ईश्वर दर्शन करवाए। तो अब गुरु की क्या जिम्मेदारी है कि आपको वो ईश्वर दर्शन करवाए। तो ईश्वर दर्शन करवाने के लिए ये दो चीजें लाजमी, करता ईश्वर को जानना, खुद कर्म होश में करना, शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार करने की कोशिश करना, लेकिन करता ईश्वर को जानना, और कर्म फल में आसक्ति ना रखना। कर्म करोगे तो कर्म तो फल तो होगा होगा, वो थोड़ा बच जाएगा कोई, लेकिन आपकी उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब आपने कर्म सोच समझ के कर लिया तो जो परिणाम आना है वो आएगा उसका, लेकिन तूने क्योंकि गुरु इसलिए धारण किया है कि तूने ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो तू कर्म फल में आसक्त यदि रहेगा तो ये काम तेरा जिंदगी में कभी नहीं हो सकेगा। इसीलिए कर्म फल में ईश्वर आज्ञा की बात समता विलास में जगह जगह की गई। और गीता में भी सूत्र उन्होंने भगवान कृष्ण ने बड़ा स्पष्ट कहा है, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया, इस यंत्र रूपी देह में स्थित प्राणियों को, इस यंत्र रूपी देह में स्थित जीवों को उनके प्रारब्ध के अनुसार यानी अपनी माया से मैं संसार में उनको भरमाता हूं, घुमाता हूं, उनसे कर्म करवाता हूं। कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। और कहे क्या रहे हैं, जरा एक एक वर्ड देखो शास्त्र का, हम तो केवल बस कहे जाते हैं, बस वहां हमारी बुद्धि टिकती नहीं है, ये कहे क्या रहे हैं। हर वर्ड इतना बारीक होता है शास्त्र में, इसलिए उसको सूत्र कहते हैं। वो एक गीता के श्लोक पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, पूरा चैप्टर लिखा जा सकता है, क्योंकि उसकी बारीकी जब खोली जाएंगी तब आपको पता लगेगा ना क्या कह रहे हैं। यंत्रारूढ़ानी माया, इस यंत्र रूपी देह में स्थित प्राणियों को, गीता उसके लिए लिखी गई है जो देह में स्थित प्राणी है। मैं अपने आप को देह समझ के गीता पढ़ रहा हूं तो क्या खाक समझ में आएगी गीता मेरी, सारा अर्थ का अनर्थ कर दोगे आप। तो विचार करो जरा कि गीता स्पष्ट कह रही है, भ्राम्यन सर्वभूतानि, सारे प्राणियों को मैं भरमाता हूं। इसलिए महाजी ने कहा, प्रेमी तेरे अंदर जो ये कर्तापन है ना, ये भ्रम है, ये डिल्यूजन है। ये कहा है, नहीं कहा है महाराज ने, ये मूल भ्रम है, इसी को मूल माया भी कहते हैं। इसी माया से फिर नाम रूप की माया पैदा होती है, इस कर्तापन मूल माया से नाम रूप की माया पैदा होती है जिसमें हम फंसे रहते हैं। तो यदि एक वर्ड पर भी हम ध्यान दें गीता के, तो ये सारा रहस्य तो खोल देगी आपका, आपके कर्म करने के तरीके ही बदल देगी, आपके सोचने के तरीके बदल देगी। लेकिन गीता पढ़ते बहुत है, मैंने आज तक किसी से एक्सप्लेनेशन सुना ही नहीं उसका, किसी एक से भी गीता का एक्सप्लेनेशन ये नहीं सुना जो उसका वास्तव में है। तो साफ गीता कह रही है कि इस यंत्र रूपी देह में स्थित प्राणियों को मैं संसार में भरमाता हूं। कैसे भरमाते हैं वो, क्योंकि प्राणी अपने को प्राणी नहीं समझता, प्राणी अपने को मनुष्य समझता है, मनुष्य का मतलब देह समझता है, मनुष्य तो देह से है ना। क्योंकि मनुष्य अपने आप को देह समझता है, इसलिए वो इसका अर्थ नहीं समझ पाता। सीधा सा अर्थ है, इस यंत्र को मैं चलाता हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस तेरी देह रूपी यंत्र को मैं चलाता हूं, अपनी माया। वो माया क्या है? इस देह का जो प्रारब्ध उन्होंने डिसाइड किया है जन्म लेते ही, उस प्रारब्ध के अनुसार अब आपकी देह संसार में घूमेगी, कर्म करेगी। और यही हमने अध्यात्म मार्ग पर चलकर गुरु की बात समझकर यही हमने करना था कि इस देह को ईश्वर के हुक्म में चलता हुआ जानना था, अपने आप को इस देह से अलग करके जानना था। जीव इस समय कर्ता और भोक्ता है, और जिस समय आत्मदर्शन हो जाता है उस समय ये दृष्टा हो जाता है। दृष्टा उसे कहते हैं जैसे कि मैं आपका दृष्टा हूं, यदि मैं आपको देख रहा हूं तो मैं आपसे अलग हूं ना, मैं और आप एक हो सकते हैं कभी? दृष्टा कभी भी दृश्य के साथ एक नहीं होता। अध्यात्म में दृष्टा का और गहरा अर्थ है, उसको इस समय खोलने की जरूरत नहीं है। तो विचार करने की बात यह है कि जब महाराज जी भी यही बात कर रहे हैं, गीता भी यही बात कर रही है, महर्षि रमण भी यह बात कर रहे हैं, मैं इसको समझता क्यों नहीं? और अकल में अपनी इतना अहंकार है कि मैं सब समझता हूं। एक किताब मैंने दो बार पढ़ ली, मैं सब जान गया क्या लिखा है, इतना अकल का अहंकारी हूं मैं। पूरा जन्म लग जाता है भैया शास्त्र के मर्म समझ में नहीं आते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मार्ग है। जब तक आप गहराई से गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अध्यात्म पर चलोगे नहीं, शास्त्र आपकी समझ में आने वाला नहीं है। इस वहम में मत रहना कि मैं समझ लूंगा अपनी अकल के बल पे, ये उतना ही समझ में आएगा जितना आप चल लोगे। इसीलिए जिंदगी भर सत्पुरुषों की बातें पढ़ना ही चाहिए आदमी को, इसके प्रति कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए महाजी ने संतावरास में जब ध्यान से पढ़ोगे, जगह जगह लिखा ये बात, गहरा सत विचार करना चाहिए। अभी तो पहरे के पैराग्राफ के पैराग्राफ पढ़े जा रहे हो, ऐसा व्यक्ति गहरा सत विचार करना चाहिए, इस पर टिकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। और सत विचार कैसे कहते हैं? जो सतपुरुष से प्रकट हुआ उसको सत विचार कहते हैं, अर्थात जो ईश्वर से डायरेक्ट प्रकट हुआ हो। इसलिए उसको महाजी ने संतावरास में क्या लिखा? अनुभवी वाक्य लिखा, अनुभवी वाणी लिखा। लिखा नहीं लिखा तो अनुभव का क्या मतलब होता है? हम तो एक्सपीरियंस समझते हैं ना, अध्यात्म में अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता। हम देखो ना कि हम शब्द के जो हमने शाब्दिक मीनिंग समझ रखे हैं वही समझते हैं। अनुभव, अनु का मतलब होता है अनुसार, भव माने हो जाना, इसका मतलब ईश्वर हो जाना। जो जीव ईश्वर हो गया उसको कहते हैं ये अनुभवी है, ये ईश्वर ही हो गया। अब उसका जो विचार है वो सत विचार कहलाता है। अब बताइए इस मीनिंग को कोई समझेगा संसार में? मीनिंग इसका यही है। तो सतपुरुष लिख रहे हैं, महाराज जी लिख रहे हैं कि प्रेमी सत विचार पर गहरा मनन करना चाहिए। तो मुझे फुर्सत है गहरा मनन करने की? अपनी बुद्धि पर अहंकार होने के कारण मैं सत्पुरुष की बात पर ध्यान ही नहीं देता। इसलिए बड़े बड़े लंबे चौड़े कोटेशन रट लेता हूं और अहंकार ये पाल लेता हूं सब समझता हूं सब जानता हूं। तो हर वर्ड शास्त्र में कितना गहरा होता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना ही सत्संग सुन लें आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हर वर्ड का कितना गहरा मीनिंग होता है। तो इसीलिए शास्त्र ये अनुभवी ज्ञान है, उसके अर्थ तक यदि पहुंचना है तो जीवन आपको वैसा ही बनाना पड़ेगा जैसा बनाने के लिए आप सतपुरुष के पास गए हो या सतपुरुष को आपने जीवन में धारण किया है। तो महर्षि रमण ने एक सेंटेंस में बात तो कह दी, लेकिन ये समझ में इसलिए नहीं आती कि हम तो ये बातें जो है कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना में नहीं है ये बातें। जब कल्पना में ही नहीं है तो समझ में कहां से आएंगे आप? अब मुझे याद आता है 1981 में यहीं तपोभूमि में सोमराज जी आए हुए थे और एक किताब महर्षि रमण से बातचीत ओम कपूर जी ने मुझे भेंट की थी, हरिद्वार से खरीद के लाए थे, उन्होंने खुद तो पढ़ी नहीं, मुझे भेंट करी। या तो उन्हें कठिन लगी होगी या जो भी कारण रहा होगा, मैंने इसमें उसमें से दो एक क्वेश्चन सोमराज जी से पूछे तो सोमराज जी ने मुझसे ये कह दिया, इस किताब को मत पढ़ा करो। उस समय तो मैं नहीं समझ पाया, बात कह दी उन्होंने, हमारी भी नई नई मुलाकात थी उनसे, लेकिन अब बातें समझ में आती हैं क्यों कहा था उन्होंने, कि वो समझ में ही नहीं आएगी तो मैं अहंकार और जागा, मैंने महर्षि रमण की बातें पढ़ ली है सब। ऐसी एक बार उपनिषद की बात कही मैंने उनसे 93 में, मैंने कहा मेरा उपनिषद पढ़ने को मन करता है, तो बोले अभी मत पढ़ो। फिर उसके एक साल बाद उनके घर गए हुआ था, फिर मैंने पूछा उनसे, मेरा उपनिषद पढ़ने को मन करता है, कौन से किसका लिखा उपनिषद पढ़ो, क्योंकि उपनिषद तो मालूम है मुझे कि उसको समझना, उस पर भाष्य लिखना, ये पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए असंभव बात है, वो केवल अनुभवी व्यक्ति ही उपनिषद का भाष्य लिख सकता है। तब उन्होंने, मैंने पूछा कि कौन सा ऑथेंटिक भाष्य है जो मैं पढ़ सकूं, क्योंकि ओरिजिनल तो मैं समझ ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा भाष्य पढ़ो। तो मैंने कहा आपका तो बड़ी कठिन इंग्लिश में है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इंग्लिश है आपकी, वर्ड स्पीक्स टू द फर्स्ट ईयर मैन, तो मेरी समझ में कैसे आएगा? बोले इच्छा है तो समझ में आ जाएगा। खैर मैं खरीद के लाया और पढ़ना शुरू किया, पहली रीडिंग में शायद वो 15-20% समझ में आया हो, दूसरी रीडिंग में शायद 30-35% समझ में आ गया होगा, तीसरी रीडिंग करी तो शायद 60% समझ में आ गया होगा, तो मेरी कल्पना ही है, पता नहीं मैं कितना समझा। तीसरी रीडिंग के बाद फिर मैं उनके पास गया कुछ चीज़ें पूछने के लिए दिल्ली, तब उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। उसके बाद चौथी रीडिंग जब करी तब लगा कि अब ये समझ में आ रहा है, और अभी भी उन उपनिषद की रीडिंग 3 साल में एक बार तो हो ही जाती, तो हर 3 वर्ष में उसके कुछ और राज खुलते हैं। ऐसे ही गीता पढ़ता हूं उसमें भी कुछ राज खुलते हैं, ऐसे ही समता विलास पढ़ता हूं, आज तक भी राज खुली रहे, क्योंकि हो सकता है समता विलास मैंने 40 बार पढ़ ली, पता मुझे हर चीज है समता विलास की, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं कह सकता कि सारे राज समझता हूं समता विलास के। तो इसीलिए ये बड़ा बारीक मसला है, जो ईमानदारी से गुरु के अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अपना जो दैनिक जीवन है वो यदि चला रहा है और उसकी नज़र अपने लक्ष्य पर टिकी हुई है, ये मानव देह किस वास्ते मिली है, प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए, जिसने इस बात को एक्सेप्ट किया है वही गुरु की बात को गहराई से समझने की कोशिश करेगा। जब गुरु की बात को गहराई से समझेगा तब वो एक दिन ये बात जरूर समझ जाएगा कि कर्म करने के तरीके में ही कर्म से मुक्ति के संस्कार छिपे हुए हैं, उसका रहस्य छिपा हुआ है। वो रहस्य यही है कि कर्म करते करते, साधना करते करते, अंतर्यामी प्रभु की याद करते करते एक दिन तेरे जीवन में ऐसा आ जाता है कि ये जीव ईश्वर के ज्ञान में स्थित हो जाता है, ईश्वर के अनुभव में स्थित हो जाता है। उस समय जब इसकी समाधि टूटती है, तब इसको पता होता है कि कौन सा संकल्प आया था जिससे समाधि टूटी, और उस एक संकल्प का जब वो एनालिसिस करता है तो वो यही पाता है इसमें कहीं ना कहीं कोई वासना छिपी हुई थी, कहीं ना कहीं कोई कर्तापन छिपा हुआ था, कहीं ना कहीं फल की आशा छिपी हुई थी। बस उसको यही पता लगता है। चाहे वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करने का संकल्प क्यों ना लिए बैठे हुआ कि ये देश आजाद हो जाएगा, इतने लोगों का दुख दर्द दूर हो जाएगा, चाहे यही बात क्यों ना हो, लेकिन तू कौन होता है देश का दुख दूर करने वाला? इसका मतलब तू तो ईश्वर को मालिक नहीं समझ रहा है, तू मालिक बन गया, ईश्वर को कर्ता नहीं समझ रहा है। सारे जीवों के प्रारब्ध के अनुसार वो इस प्रकृति को चलाता है, हर जीव की देह को चलाता है, तो तू क्या कर सकता है उसके बीच में? कुछ दखल दे सकता है? तेरी करनी वहां कोई काम आ सकती है क्या? तो तुझको जो कर्म का प्रारब्ध दिया गया था, वो प्रारब्ध के अनुसार कर्म होते हुए भी तू उस से मुक्त हो सकता था यदि तूने इस रहस्य को समझा होता कि कर्म का कर्ता ईश्वर है, मैं जीव हूं, मैं इस देह में स्थित हूं, और देह प्रारब्ध के अधीन है तो मैं कर्ता कैसे हो सकता हूं? इसीलिए पूरे मनोयोग से ये अंतर्यामी ईश्वर की याद करता और सारे कर्म को ईश्वर के हुक्म में देखता, और उसके फल से इसका कोई वास्ता नहीं होता। बड़े से बड़ा सुख आ जाए, बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, दोनों हालतों में हिलता नहीं बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जिसके कर्म होने लगते हैं तो अंतर्यामी प्रभु से उसका परमानेंट मेल हो जाता है, वहां से सूरत इसकी हटती नहीं। तो ये जो भक्त है ये फिर निष्काम कर्मी हो जाता है, कर्म के फल के बीज नाश हो जाते हैं। जब कर्म के फल के बीज नाश हो गए तो कर्तापन भी नाश हो जाता है, फिर कैसा प्रारब्ध? इसलिए देह यदि है भी लेकिन यह मुक्ति को प्राप्त कर चुका है। तो इसीलिए सत्पुरुषों का जो जीवन है वो इसी रूप में संसार में चला करता है। महाराज जी का जीवन इसी प्रकार का था। वाणी आ रही है लेकिन महाराज जी जब कहेंगे तो ये कहेंगे प्रभु का बड़ा सख्त होकर है, इनका कोई बस नहीं चलता, महाराज जी तो यही कहते। तो फिर पुनर्जन्म कैसा? तो इसीलिए ना कर्मों के संस्कार बनते हैं, ना कर्म का फल का बंधन रहता है, वो जीव प्रभु के साथ एक हो चुका है। इस स्थिति का नाम ही दृष्टा होना है, ये जीव फिर दृष्टा है, देह इंद्रिया मन से अलग है। महर्षि रमण से पूछा गया कि सत्पुरुष को अपनी देह कैसी प्रतीत होती है? अब देखो महर्षि रमण इस रहस्य का बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कोई पथिक जा रहा है, उसके कंधे पे तौलिया पड़ा हुआ है, रास्ते में कहीं गिर गया, उसको पता ही नहीं कहाँ गिर गया। सत्पुरुष की देह भी उसके लिए ऐसी ही होती है, उसका देह से कोई संबंध नहीं होता, कहीं भी गिर जाए वो तीन काल उससे अलग है। तो इसीलिए तो ये जो इसको कहते हैं निर्लेपता। तो इस निर्लेप हालत में ये जीव इस देह के अंदर रहता रहता हो जाता है। अब विचार करिए, यदि मैं पढ़ने में लापरवाह हूँ शास्त्रों के, गुरु की बात समझने में लापरवाह हूँ, कर्मों को गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार करने में लापरवाह हूँ, तो फिर ये मंजिल मेरे लिए बहुत दूर है, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलने में पूरा पुरुषार्थ करो। महा जी कहते थे प्रेमी मैदान अमारा की अमारा, ऐसा उत्साह होना चाहिए, ये नहीं अरे चल तो रहे हैं धीरे धीरे कभी तो पहुंच ही जाएंगे, ये स्थिति नहीं चाहिए आपको, ये लापरवाह लोगों की स्थिति है। एग्जाम होता है पूरा पुरुषार्थ करते हो नहीं करते हो? कि नहीं पूरी कोशिश करता हूँ, जितने मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे अच्छी बात है, अरे पढ़ तो रहा ही हूँ जितने मार्क्स आ जाएंगे ठीक है, ऐसा सोचता हूँ कभी? ये बहानेबाजी है, अपने आप को ढीला छोड़ना है। इसीलिए वक्त बड़ा थोड़ा है, कार्य बड़ा कठिन है, इसीलिए इसमें पूरी शिद्दत से, पूरे शौक से, पूरी लगन से इस मार्ग में लगना चाहिए। इसमें कोई ढिलाई नहीं, कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि मौत का पता नहीं, वो कल आने वाली है। रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, घर पहुंच भी ना पाए, सोच रहे थे कि घर जाके करेंगे, लेकिन यहीं जो टाइम मिला है पहले यहीं करो भैया, यहाँ एक घंटा भी क्यों बर्बाद करते हो। हर वक्त ईश्वर को याद रखना चाहिए, हर वक्त महाजी कहते प्रेमी मौत को याद रखना चाहिए, क्योंकि जो वक्त मिला है वो बड़ा कीमती है, इसका पूर्ण सदुपयोग करें, तब एक दिन हम भी निष्काम कर्मी बन जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।